ओम शांति। हमारे संत वृंद, भारत की अनुपम धरोहर, हमारी संस्कृति के प्राण, धर्म प्रेमी बंधुओं, परम हर्ष का विषय है कि आध्यात्म के द्वारा मानव जीवन के उत्थान विषय पर हम विगत चार दिन से मंथन चिंतन कर रहे हैं और अब उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसे कहा तो समापन सत्र जाता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा परमात्म प्रेम और आनंद और आत्मशक्ति से भरपूर होकर यह कह रही है कि ये सुंदर शुरुआत एक आंदोलन की, एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जनमन को उत्थित करने की सम्मेलन है और सत्र है। मैं आवाहन करती हूं इस स्नेह सम्मान और आत्म उत्थान के कर्तव्य के लिए आप संत महात्माओं ने जो लंबे समय से अहर्निश परमार्थ की मशाल संभाली, स्वांत सुखाय से विश्व सुखाय की चहुं ओर लहर दौड़ाई, अब आइए आप और हम मिलकर पुनः भारत की संस्कृति, भारत का प्राचीन राजयोग और भारतवासियों के प्रति धर्म, आध्यात्म और ईश्वर के प्रति वे आस्था अपने रोल से जागृत कर दे, ताकि भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता है वो भारतवासियों के सोच, बोल, कर्म और संस्कारों से प्रमाणित हो जाए। तो मैं इस सुंदर मंच को सुशोभित करने के लिए संत वृंद, आदरणीय प्रातः स्मरणीय महात्माओं को, जिनके दर्शन मात्र से परम धाम की स्मृति आती है, परमात्म प्रेम की स्मृति जागृत होती है, उनको बड़े आदर के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मंच को शोभायमान करने के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षा है धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी इलाहाबाद, और आज के समापन सत्र की मुख्य वक्ता हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोमप्रभा दीदी सोलापुर। उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पर आकर अपनी आभा से मंच को सुशोभित करें। साथ ही साथ मैं संत वृंदों में मूर्धन्य आदरणीय भ्राता स्वामी माधवानंद जी महाराज, जो ब्रज क्षेत्र वृंदावन से पधारे हैं, महंत सागरनाथ जी हासी, आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर, श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज करनाल। मेरा सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि हमारे सम्मानित संत महात्मा विद्वान मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आप जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन स्वागत करते रहें। साथ ही साथ मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ महंत नानक दास जी प्रमुख कबीर पंथ बड़ी खाटू, श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज करनाल, करपात्री श्री जीएल स्वामी जी अयोध्या उत्तर प्रदेश, आचार्य श्रीमद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती सचिव ऑल इंडिया साधु समाज भुवनेश्वर, साथ ही साथ मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी विष्णुगिरी जी महाराज, सचिव उड़ीसा साधु संत समिति भुवनेश्वर, डॉक्टर सचिनानंद जी महाराज ज्योतिषाचार्य उज्जैन, आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज पीठाधीश्वर पीताम्बर विद्यापीठ मोदीनगर, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी नीता जी महाराज सूरत, स्वामी दिव्य आत्मानंद जी महाराज फरीदाबाद, और आज के इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार नारायण भाई इंदौर। आप सब मंच की शोभा को आपने सूर्य की भांति तेजोमय बना दिया है। मैं पुनः सभा में विराजमान सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस सुंदर मंच का हृदय से आत्मा से करतल ध्वनि के द्वारा जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। ये मंच हम सबको ऊर्जा देकर सारे विश्व को ऊर्जावान बनाएगा। और अभी बैठते हैं उस प्रभु की स्मृति में जिसके आदेश पर ये सुंदर समागम आयोजित हो रहा है।
प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का नम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप, विनम्रता की आरती हो पवित्रता की धूप, सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप, भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का
परमात्मा स्मृति में सभी संत महात्माओं ने उस परम सत्ता का आवाहन किया और संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बुझाए औरों की दे दे अपना संग। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जैसे सिद्धांतों से जो ओत प्रोत होते हैं संत वृंद, उनको आज इस ईश्वरीय यज्ञ से वर्तमान समाज में शांति एकता की स्थापना में मेरा योगदान विषय को प्रकाशित करने के लिए यहाँ आवाहन किया गया है। तो ऐसे माहेती कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करने वाले संत वृंदों का हृदय से स्वागत करने के लिए हमारी तपस्विनी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहने गुलदस्ते बैज के द्वारा अभिनंदन करने आ रही हैं। मैं सभा से निवेदन करूंगी कि आप भी उस स्वागत की श्रृंखला में अपना योगदान करतल ध्वनि के द्वारा प्रदान करते जाएं। ब्रह्मा कुमारी बहने, हमारे सम्मानित संत वृंद को बैच गुलदस्ता पटके के द्वारा स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। जिन संत वृंद का सृष्टि रंगमंच पर आगमन हुआ ही है परमार्थ और परोपकार के लिए, वो संत वृंद आज परमात्म बल और शक्ति से प्रेरित होकर पुनः भारत और भारतवासियों को शांति और एकता की स्थापना में अपना कर्तव्य जागृत करके आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर प्रस्थान करेंगे यहाँ से, और प्रत्येक जनमन को इस शांति सद्भाव एकता से भरपूर करेंगे। आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते जाएं, हमारी बहनें शॉल से तिलक से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते जाएं, धीरे धीरे नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति के साथ हृदय की गहराई से जोरदार करतल ध्वनि करते हुए हम अभिनंदन करते जाएं, स्वागत करते जाएं, क्योंकि ये अवसर है एक साथ इतने संतों के दर्शन कर अपने भाग्य को अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना, पुण्य से भरपूर करना। तो ये अवसर मिला है हमको संत महात्माओं के दर्शन से ऊर्जा से भरपूर होने का। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि सिर्फ ये नहीं कि भुवनेश्वर का हुआ है सम्मान तो भुवनेश्वर वाले ही बजाएं, बल्कि सभी एक साथ जोरदार करतल ध्वनि करते रहेंगे तो ये मंच ऊर्जा से परमात्म शक्तियों से और भरपूर होता रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वागत की श्रृंखला में पटेल नगर ग्रुप के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों का, जो 21 तारीख से ही हम सब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक दिव्य नृत्य के द्वारा वो अपना दिव्य प्रस्तुति देने जा रहे हैं, पटेल नगर ग्रुप दिल्ली। जोरदार करतल ध्वनि से इन बाल कलाकारों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारी सतयुगी सृष्टि का परिकल्पना को ये दिव्य नृत्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं।
चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर की तार है उसकी नजरें उतार है, डर भी उससे डरार है जिसकी रखवाली यार है। करता साया तेरा देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
अनादि है शिव, अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर एक हरि हर फूल से वो प्यार करता
मेरे बांके
मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी
तोरी सूरतिया पे मन मोरा टिका प्यारा लागे तोरा पीला पटका
हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला पटका
तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा पीला
तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल
तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम इतना
Thank you.
बहुत सुंदर हमारे इन बाल कलाकारों ने हमें समापन का उद्देश्य कलयुगी तमोप्रधानता से सतयुगी सतोप्रधानता की ओर प्रवेश दिला दिया। हम जोरदार करतल ध्वनि से इन बाल कलाकारों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और आते हैं अपने विषय पर। वर्तमान समाज में शांति एकता की स्थापना में हम सब का योगदान, स्वयं मेरा योगदान, उसको स्पष्ट करने जा रही हैं हम सब के बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोम प्रभा दीदी, जो 1968 से इस ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान का मनन चिंतन प्रयोग कर रही हैं और 1969 से आप समर्पित जीवन विश्व कल्याण के लिए अहर्निश व्यतीत कर रही हैं। आप सोलापुर महाराष्ट्र सब जोन की संचालिका हैं। आपके निर्देशन में 52 सेवा केंद्र और 400 इंटीरियर में गांव-गांव में गीता पाठशालाओं के रूप में संचालित करती रही हैं। आप भारतवर्ष के अलावा देश के विश्व के अंतर्गत भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप धार्मिक प्रभाग की कार्यकारिणी सदस्य हैं और आप
माइक हाथ में देना
रखवाना। अच्छा, आप अभी हमारे बीच में मुख्य वक्तव्य के रूप में अपना वक्तव्य देने जा रही हैं और आपने धर्म के क्षेत्र में महाराष्ट्र के द्वारा वसव रत्न से सम्मानित हुई हैं। ऐसी महान अनुभव युक्त राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोम प्रभा दीदी से मेरा निवेदन है कि वो आज के विषय पर हम सबको मार्गदर्शन अपने मुख्य वक्तव्य के द्वारा प्रदान करें। आदरणीय दीदी,
हम सब प्यार से अभी तक 4 दिन से सुनते आ रहे हैं उस विशेष महामंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम शांति बोलिए। हम सब अपने दिल से, दिल के आवाज से उच्चारण करेंगे। ओम शांति। जगत नियंता, जगदीश्वर, जगत के रक्षक, शिक्षक, परिपालक, सारे विश्व के जगत गुरु, परम पिता, ज्ञान शांति के सागर, एकता को स्थापन करने वाले विशेष महान परम पिता परमात्मा शिव बाबा, हम सब के एक ही एक एक नाथ परमात्मा की सर्वप्रिय संतान, उपस्थित सर्व आत्माओं, मंचासीन, हम सबकी प्रिय अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी, कविता दीदी जी, नारायण भाई जी एवं अन्य मंचासीन हमारे महान महान संत महंत स्वामी आचार्य जगद्गुरु महामंडलेश्वर, इन सब को और आप सर्व उपस्थित इस सभा के सुशोभित सर्व विभूतियों को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं बहुत बहुत हृदय पूर्वक सत सत नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप सब महान संत आत्माएं और अन्य उनके फॉलोअर्स लगभग 4 दिन से हम आज के विषय पर मुख्य अम्ब्रेला थीम के आधार से कई विषयों के आधार से सुनते आ रहे हैं। आध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान, इस अम्ब्रेला थीम इस साल के हमारे धार्मिक प्रभाग के मेन विषय रहा, क्योंकि वर्तमान समय पर मानव जीवन की उत्थान की अति आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो इसके आधार पर जो आप सभी 4 दिन से बहुत शांत पूर्वक सुबह से लेकर के राजयोग शिविर से लेकर के रात के सेशन तक आप समाधान से इसका अध्ययन करते आए और साथ साथ अपने जीवन में भी इसको अपनाने का मैं समझती हूँ बहुत निर्णय लिया होगा। और कई आप सभी महान आत्माएं साधु संत बहुत समय से इसका अभ्यास आप स्वयं करते भी आ रहे हैं, दूसरों को कराते भी आ रहे हैं, फिर भी आप इतने समाधान से शांति से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए आप सबको मैं नतमस्तक दंडवत नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी दिल चाहिए। ऐसे अन्य स्थान पर अन्य संस्था में आकर के हम शांति से इन सब बातों को सुनना समझना, दूसरों को भी उस प्रकार से सुनाकर उनको भी ऐसे बनाना, तो ये आप सबका ही आद्य कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ आज के विषय पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो हम सब जानते हैं आज समापन सत्र में हम सब उपस्थित हैं, तो अभी ये अंतिम विषय है कि वर्तमान समाज में शांति एकता की स्थापना में मेरा योगदान, मेरा योगदान। वास्तव में हम सबका योगदान है, तो हर एक व्यक्ति हम अपने आप में समझे कि मेरा विशेष योगदान हो। तो वैसे देखा जाए इस विषय को हम 3 भाग से विभाजन करके समझते जाए, थोड़ा बहुत हम ठीक तरह से समझ पा सकेंगे। वास्तव में वर्तमान समय की समाज की परिस्थिति क्या है, पहली बात हमें ये जानना होगा। दूसरी बात, शांति एकता की स्थापना में, शांति वर्तमान समय पर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ साथ एकता हम समाज में कैसे ला सकते हैं, और तीसरी बात हमें समझना है कि इसमें इस स्थापना के लिए हमारा योगदान क्या है। हम हरेक व्यक्ति का कोई ना कोई विशेषता हम सब व्यक्ति में है, व्यक्ति के अंदर है, तो उस उन विशेषताओं को कैसे हम इस कार्य में इस्तेमाल करें, तो तभी हम इस सृष्टि को, विश्व को, जगत को अर्थात समाज को परिवर्तन कर सकते हैं और शांति एकता ला सकते हैं। हम वर्तमान समय पर समाज को देख रहे हैं तो क्या परिस्थिति है हम सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब इन बातों के अनुभवी है, कितनी दिन प्रतिदिन इस दुनिया में समस्याएं बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है और साथ साथ मनुष्य कितना तनावग्रस्त होता जा रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्या क्या परिस्थितियां हो रही है, तो ये तो वर्णन करने की बात नहीं है, ये स्वयं सबकी अनुभव की बात है। तो ऐसे परिस्थिति में हम समाज में अर्थात सारे विश्व में, क्योंकि हम सब एक एक व्यक्ति समाज की इकाई है, बैकबोन है, तो हमारा हरेक का कर्तव्य है अपने देश को, अपने देश के द्वारा सारे विश्व को परिवर्तन में लाना। तो उसमें वर्तमान समय की अशांति, दुख, अपवित्रता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, इन सब को निर्मूलन करके फिर से विश्व में शांति स्थापन करने हेतु हमें केवल परमपिता परमात्मा जो सिखाते आ रहे हैं उस आध्यात्मिक सत्य ज्ञान का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और एकता के लिए भी हम कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, परंतु वास्तव में प्रैक्टिकल में ये कार्य चल रहा है? ऐसे मानव की स्थिति है वर्तमान समय पर, ऐसे आपस में सभी एक धर्म मिलकर के चल रहे हैं? वास्तव में देखा जाए सारी दुनिया में हम धर्म भ्रष्ट परिस्थिति, कर्म भ्रष्ट परिस्थिति अनुभव करते आ रहे हैं। इसीलिए गीता में भी ये बात बताई गई है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, परित्राणाया साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, सॉरी। तो ये सभी जो भी बातें हम सुनते आ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकल में लाने हेतु हमको अपना योगदान क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये समझना भी अति आवश्यक है। तो वास्तव में हमको इस योगदान के लिए तीन बातों के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। एक है हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है वेयर देर इज प्यूरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जहां पर पवित्रता है वहां ही सुख और शांति उपलब्ध है। तो ऐसे पवित्र जीवन हमको व्यतीत करने से ही हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ हम एकता ला सकते हैं। तो ऐसे दूसरी बात हमें ये भी समझना अति आवश्यक है कि जो परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव कल्याणकारी पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग का 1936 से लेकर के अभ्यास कराते आ रहे हैं, वो सहज राजयोग कर्मयोग क्या है उसको समझ करके राजयोग का अभ्यास हम करते निरंतर अपने कर्म व्यवहार भी करना ये भी जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मेडिटेशन करना है तो कर्म को छोड़ना है, कर्म करते हुए भी हम कर्मयोगी बनकर कैसे हम राजयोग का अभ्यास किया जाए, तो ये इसको भी सीखना अति आवश्यक है। ये यदि राजयोग के अभ्यासी हम बनेंगे तो सचमुच स्वयं अपने अंदर शांति की अनुभूति जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और जब मैं स्वयं शांति की अनुभूति कर सकती तभी तो मैं दूसरों को भी दे सकूं। मेरे जेब में कुछ भरा है तभी तो हम दूसरों को दान कर सकूं। यदि मेरे जेब ही खाली है, मेरे हाथ ही खाली है, हम दूसरों को क्या दे सकेंगे। भले हम अपने आप को मैं आत्मा हूं कहते हैं, परमात्मा की संतान हूं कहते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा के पास कौन से गुण हैं, कैसी शक्तियां हैं, उनको जान करके हम अपने अंदर अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। इसके लिए ही मेडिटेशन की जरूरत है। ये आध्यात्मिकता के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात है, नारी का सम्मान करना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय पर नारी भी अपनी सभ्यता को खो करके बैठी है और अन्य मानव भी नारी के लिए सम्मान देना छोड़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दुनिया में अत्याचार अनाचार जो चलता आ रहा है, तो इसको हम परिवर्तन करना अति आवश्यक है। तो उसके लिए जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्य चार विषयों पर हर दिन सत्संग किया जाता है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये चार विशेष विषय है, सब्जेक्ट है। वो क्या है, कैसे है, मैं समझती हूँ जो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क संबंध में आप जो भी भाई बहने महंत साधु संत महात्माएं आए हैं तो वो जानते भी होंगे। फिर भी जो अभी निमंत्रण पर आज आप सभी उपस्थित हुए हैं, आप सब से मैं केवल यही निवेदन करती हूँ कि अपने सेवा केंद्र पर जाकर इन चारों सब्जेक्ट के संदर्भ में कैसे इधर सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये सत्संग कैसे चलता है हर दिन 1936 से लेकर के जो पिताश्री जी के द्वारा परमात्मा के सत्य ज्ञान सहज राजयोग की प्राप्ति इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमें प्राप्त होते आ रहे हैं, वो अभी तक भी एक दिन भी ये सत्संग बंद नहीं हुआ है। ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक महान विशेषता रहा है। तो मैं समझती हूँ आप लोग भी संत महात्माएं ऐसे ही अपने अपने सत्संग करते आ रहे हैं, आप लोग भी सचमुच अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हुए हर दिन आपके भक्तों को सत्संग कराते हुए अभी तक इस सृष्टि मंच पर शांति को, एकता को थोड़ा बहुत प्रमाण में क्यों नहीं हो, आप तमाते आ रहे हैं, परंतु फिर भी जो हमारे महात्मा गांधी जी स्वप्न देख करके गए हैं, सारे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो, परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय के हमारे पिताश्री कहते हैं कि सारे विश्व में हम इस प्रकार के राम राज्य की स्थापना हम कर सकते हैं, ऐसे राम राज्य की स्थापना के कार्य में आप लोग भी सभी सहयोगी है ही, परंतु इस सहज राजयोग सहज ज्ञान का हर दिन का अभ्यास करते हुए आप हम सब हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जोड़कर हमें भी इस कार्य में पूरा पूरा आप लोग सहयोग देंगे, राम राज्य की स्थापना में, विश्व में शांति लाने की कार्य में और एकता लाने के कार्य में आप सबका पूरा सहयोग हमें मिलेगा 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 जरूर। ऐसे तो कृपया हाथ उठाइए सभी, तो ऐसे आप सब के द्वारा हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, समय के अनुसार हम सबको पुरुषार्थ भी करना है, तो ये समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी कब हम हमारा अंत होगा बोल नहीं सकते, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस महामंत्र को आप लोग सभी जरूर साथ में लेकर के जाएंगे, जो भी आप इधर से प्राप्त किए हैं आप लोग अपने भक्तों को भी बांटेंगे, अन्य आत्माओं को भी इस प्रकार से शांति प्राप्त कराएंगे और एकता लाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। इस आशा के साथ ही नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे इन शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर आदरणीय दीदी ने हमारी भक्ति, आस्था, धर्म और कर्तव्य को परमात्मा से जोड़ते हुए हमें शुभ समाचार दिया कि अब एक और एक ग्यारह मिलकर जब हम व्यक्ति समाज में शांति एकता की स्थापना में अपना योगदान देंगे तो हमें परिणाम सुखद मिलेंगे। आदरणीय दीदी ने कुछ कहा ऐसे, अंधकार को न देख, अंधकार को न देख एक दीप जलाओ, मानवता निद्रा में है आप उसे जगाओ, मानवता निद्रा में है आप उसे जगाओ। तो ऐसे योगदान का आह्वान आदरणीय दीदी ने अपने वर्तमान परिदृश्य की वातावरण को हमारे सामने रखते हुए हमसे अपेक्षा की, इच्छा की, और हम सब ने सहृदय होकर उसमें सहयोग का संकल्प लिया। अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश अयोध्या से पधारे हैं आदरणीय करपात्री श्री जीयर स्वामी जी अयोध्या से। मैं उनको विनम्र निवेदन करती हूँ, से सम्मान आग्रह करती हूँ कि आदरणीय करपात्री श्री जीयर स्वामी जी अयोध्या से जो हमारे बीच में पधारे हैं वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे दंडी स्वामी आदरणीय करपात्री श्री जीयर स्वामी जी का मान सम्मान स्वागत मंच पर आकर करें। हम सभी भी जोरदार करतल ध्वनि से करपात्री जी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन इस संत वृंद की इस सत्र के अंदर मंच के ऊपर करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि एक बार पुनः हो जाए, हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहने उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए आ रही हैं। आदरणीय करपात्री श्री जीयर स्वामी जी अयोध्या। ये आप संत वृंद की खुशबू अरावली की पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी श्वास श्वास का त्याग, तपस्या और सेवा पूरे विश्व में फैल रही है और वहाँ से उस सुगंध को लेकर हमारे आदरणीय करपात्री जी अयोध्या से पधार रहे हैं। हम उनका हृदय की गहराइयों से आत्मीयता के साथ पुनः अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय अतिथि स्वामी माधवानंद जी महाराज, जो वृंदावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, उनसे निवेदन करती हूँ कि आपने अपने योगदान को हम सब से साझा करें कि आप यहाँ से जाकर अपने भक्तों को, शिष्यों को, अनुयायियों को और अपने समाज को किस प्रकार से इस आध्यात्म की धारा से जोड़कर अनुग्रहित करेंगे। हम निवेदन करेंगे कि सभी संतों को समय की मिल जाए तो अपने अपने सार सरगर्भित विचारों को मंच पर रखने का प्रयास करें। आदरणीय भ्राता माधवानंद जी महाराज, वृंदावन।
ओम शांति। इस सभागार में उपस्थित हमारे पूज्य संत वृंद, आचार्यगण एवं इस महान ईश्वरीय विद्यालय में पल्लवित पुष्पित हो रहे हमारे समस्त ब्रह्मा कुमारी भाई बहन, जगह जगह से पधारे हुए परमात्म प्रेमी समस्त भक्तवृंद, जगत को हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर हमें विचार करना है। हम क्या दे सकते हैं? मुझे वह कहानी याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की। गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव, नरेंद्र जो पूर्व नाम था, बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी गए। माँ पार्वती वहां कन्या रूप में शिव को पाने के लिए तप कर रही है, इसलिए कन्याकुमारी कहा जाता है। और माँ के सामने बहुत क्रंदन करने लगे, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के सामने क्रंदन कर रहा हो। क्रंदन किस लिए? इसलिए नहीं कि माँ तुम कब दर्शन दोगी, मुझे कब प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी, नहीं। पूरा भारत उनके मानस पटल पर नाच रहा था। और यही माँ से कह रहे हैं कि माँ मेरे इस देश की यह दुर्दशा कैसे हुई? वह वैदिक भारत, वह उपनिषदकालीन भारत, वह मेरा स्वर्णिम भारत, देवभूमि, ऋषियों की भूमि, आज ऐसा कैसे हो गई? 33 करोड़ आबादी मानो जैसे केंचुए की तरह रेंग रही है धरती पर। गुलाम था उस समय भारत, गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत, राग द्वेष, ये सब देखा। और जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा था अपने स्वर्णिम भारत के बारे में, वह दिखाई नहीं पड़ा। तो माँ से प्रार्थना करें कि माँ ये क्यों हुआ, तुम तो जानती हो मेरे देश की दुर्दशा क्यों हुई इस तरह से, कौन सा अभिशाप लग गया, और साथ ही मैं भी कुछ कर सकता हूं इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, क्या मैं भी कुछ सहयोग कर सकता हूं, मेरे में ऐसी कोई प्रतिभा है जिसका तुम अगर उपयोग कर सको और मैं भी कुछ योगदान दे सकूं। गिलहरी की तरह ही, जैसे सेतु बंध में गिलहरी एक कंकड़ डाल रही है, और इसी भाव दशा में बहुत उनका बीपी हाई हो गया, ब्लड आ गया आंखों में। और आप जानते हैं वो विशाल मंदिर आपने देखा होगा समुद्र में, वो एक टापू, और उस पर कूद पड़े समुद्र में, आधा किलोमीटर तैरता हुआ वो महापुरुष समुद्र की लहरों से जूझता हुआ, और उस शिला पर जाकर बैठ गया, 3 दिन बैठे रहे। और वहां पर गुरुदेव का फिर साक्षात्कार होता है, रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ, और समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करो, पश्चिमी देश की तरफ जैसे वो जा रहे हैं तुम मुझे फॉलो करो। और उन्हें संकेत मिल गया कि मैं कुछ सहयोग कर सकता हूं, तो उसकी गुंज पहले पश्चिम से करनी होगी और फिर भारत में आकर कार्य करना होगा। और वह महान दिन आप जानते हैं शिकागो में, जहां सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन था, 11 सितंबर 1893 से प्रारंभ था वह सम्मेलन। वह अद्भुत था विश्व सम्मेलन, शायद वैसा ऐतिहासिक सम्मेलन फिर दोबारा अभी तक धरती पर नहीं हुआ। और सबसे बाद में इस धर्म को रखा गया था, हिंदू धर्म की तरफ से प्रतिनिधि जो गए थे विवेकानंद, एकदम लास्ट में इनको दिया गया 31वें नंबर पर, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो एक लंबी कहानी है। भारत इतना सोया हुआ था कि किसको मैं भेजूं प्रतिनिधि रूप में, अभी निर्णय ही नहीं हो पा रहा था। और तीसरे धर्म के प्रतिनिधि पहले से जा चुके थे। फिर उसके बाद लेकिन जब प्रारंभ हुआ उद्बोधन, तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में सब वहां के अखबारों ने, जर्नलिस्टों ने सब लिखा दिल खुलकर कि भारत से आया हुआ यह सन्यासी, इनका भाषण सर्वोपरि रहा है। और वहां के पत्रकारों ने व्यंग भी किया कि शर्म आनी चाहिए यहां के धर्माचार्यों को जो जाते हैं भारत में धर्म परिवर्तन करने। अरे धर्म तो भारत के पास है, अगर दो चार विवेकानंद और हों तो मुझे भेजे, धर्म तो वहां है, वहां धर्म की कमी नहीं धन की कमी है। तो पर स्वामी विवेकानंद की वाणी वहां क्यों सब पर भारी पड़ी, उसमें क्या खास थी? वह सर्वधर्म समन्वय। स्वामी जी ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधि हूं, उस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने पूरे मानवता को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। और इसको स्वीकार किया सब प्रबुद्ध श्रोताओं ने कि सहिष्णुता टॉलरेंस का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है पूरे विश्व को तो वह सनातन धर्म है। बाकी धर्मों में इतना टॉलरेंस सहिष्णुता का भाव नहीं है, बहुत असहिष्णु है। इसीलिए हमारे यहां कभी भी धर्म परिवर्तन वाला काम नहीं हुआ। हमारे ऋषि मुनि कभी नहीं कहे कि दूसरे का धर्मांतरण जाकर कर लो, थोड़ा बहुत की भी जाती है तो घर वापसी कहते हैं, जो तुम ही चले गए थे फिर रिटर्न बैक टू योर होम। और लेकिन ये नहीं कहा जाता कि धर्म परिवर्तन कर लो, अगर आप अपने किसी भी मार्ग पर एक निष्ठ होकर चल रहे हैं तो आप चलें, हम उसका सहयोग करेंगे। तो सनातन धर्म एक बहुत विचारधाराओं का एक गुलदस्ता है। और यह बाड़ी जो गुंज रही थी विवेकानंद की, वो उनके गुरुदेव के माध्यम से, बाद में विवेकानंद से पूछा गुरु भाइयों ने कि ऐसा तुमने नरेंद्र क्या बोल दिया, बोले मैं तो वहां एक स्पीकर की तरह खड़ा हो गया और गुरुदेव ने मेरा सहारा ले लिया। और जैसे गुरु की वाणी पर, गुरुदेव कौन थे? वह महान दक्षिणेश्वर के उस प्रयोगशाला में अनेक मार्गों से जिसने साधना किया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मैं तो चाहूंगा कि आप अगर विश्व शांति और विश्व धर्म समन्वय चाहते हैं तो एक बार ठाकुर रामकृष्ण अवश्य पढ़ना। ये ऐसा विश्व का महापुरुष है जिसने अनेक मार्गों से चलकर देखा, यानी कि वैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम राजनीतिक रूप से कह दिया, उसने चल के देखा। ऐसा और दुनिया में कोई उदाहरण नहीं, अनेक मार्गों से चल, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सब मार्गों से, वेदांत से लेकर भक्ति के अनेक आयाम से चला। कृष्ण का मधुर भाव से भी साधना किया, राम का कौशल्या और हनुमान भाव से भी साधना किया, और गहन अद्वैत वेदांत का भी साधना किया अपने गुरुदेव तोतापुरी के सानिध्य में। भैरवी ब्राह्मणी से पूरे तंत्र की साधना किया। ऐसा और उदाहरण जिसे पूरा वेद सनातन धर्म इकट्ठे उनमें दिखाई पड़ा। और वही जो बाणी थी विवेकानंद के माध्यम से वह फूट पड़ी। और उन्होंने, गुरुदेव ने, रामकृष्ण देव ने एक सुंदर सूत्र दिया इस जगत को, जतो मत ततो पथ। ध्यान देना इसको, जतो मत ततो पथ। जतो मत का जितने मत होंगे उतने पथ होंगे, पर मंजी लेख होगा। अब आप कहोगे जतो मत ततो पथ कैसे हो सकता है? तो यहां मनुष्य मनुष्य में भिन्नता है। हम आज जो दिखाई पड़ रहे हैं, हम आज से नहीं हैं, हम अनंत काल से यात्रा करते चले आ रहे हैं। और सबका एक संग्रहित संस्कार हमारे चित्त पर है, और उसी के हम एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट है। अभी हम जो वर्तमान में हैं, अपने ही पूर्व इस जन्म अथवा बहुत जन्मों के संस्कारित हुए कि हम प्रभाव हैं। तो हर मनुष्य एक अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। मनुष्य मनुष्य कोई अंतर्मुखी स्वभाव का, इंट्रोवर्ट स्वभाव का है, कोई बिल्कुल बहिर्मुख स्वभाव का है, एक्स्ट्रोवर्ट स्वभाव का है, कोई उसमें मिश्रित है, किसी में इंट्रोवर्ट का परसेंटेज कुछ है, एक्स्ट्रोवर्ट का कुछ है। तो मनुष्य मनुष्य में भिन्नता है, और मनुष्य का सम्मान करना होगा कि इसी भिन्नता में आपको अपनी मंजिल तय करना होगा। अब एक ही डंडे से सबको हाँको कि हमारा ही मार्ग सत्य है, हमारे प्रभु का नाम सत्य है, तो तुमने नहीं जाना विश्व शांति का, फिर जो आपने ख्वाब देख रखा है वो बिल्कुल भूल जाए। बहुत लोग कहते हैं हम सब, सभी लोग सारे संप्रदाय कह रहे हैं कि मैं विश्व शांति चाहता हूं, लेकिन सब अपने अपने कुएं में घूम रहे हैं। इस कूप मेंढुकता को छोड़ना होगा। शिकागो में भी ऐसे हुआ था, सब आकर अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। उस दिन विवेकानंद ने कुएं के मेढक वाली कहानी सुनाई बस, और एक समुद्र के मेढक की, जो आप बचपन से सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, और उससे सब लज्जित हुए, शांत हुए। मेरा मतलब यह है, भारत में तो पूरे विश्व में अनेक मतपथ हैं, लेकिन अपने भारत में भी बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से मतपथ हैं, और हम सबका आदर करते हैं। हम मानते हैं कि बहुत से स्वभाव ऐसे होते हैं लोगों के जो सगुण साकार मार्ग से चलकर आसानी से पहुंच सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्गुण निराकार, नेति नेति का मार्ग, जो वेदांत का अद्भुत सूत्र है, उपनिषदों ने दिया है, उस मार्ग से उनको चलना बड़ा अच्छा लगता है, उनके स्वभाव में है वो। अब आप बुद्ध को खड़ा करो, चैतन्य महाप्रभु को खड़ा करो, चैतन्य हाथ उठाए अपना कीर्तन कर रहे हैं, बुद्ध एकदम ध्यानस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, पर दोनों कहीं जाकर मिलते हैं, दोनों का मार्ग देखोगे तो भिन्न दिखाई पड़ेगा। कहां चैतन्य नाचता हुआ, मीरा नाचती हुई, और बुद्ध एकदम ध्यानस्थ, लगेगा कि तो अलग अलग मार्ग से हैं। मार्ग बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है। जो अंतिम अनुभूति कर रहे हैं आनंद की, वो बुद्ध भी वही कर रहे हैं जो चैतन्य कर रहे हैं, लेकिन मार्ग की भिन्नता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अनेक जो संप्रदाय हैं, ये चिंता का विषय नहीं, ये अच्छी बात है कि इतने संप्रदाय हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार आप चुन सकते हैं, लेकिन जो निष्ठा से गुरुओं ने बताया है उसके द्वारा हमारा चलना धर्म है, और चलेंगे तो अंतिम जो अनुभूति है, जतो मत ततो पथ है, लेकिन मंजिल एक है। उस महापुरुष ने अनुभव करके देखा कि अंतिम जो अनुभूति मिल रही है, जो चरम की अनुभूति, क्लाइमेक्स अध्यात्म का, वह एक है। तो इसी तरह से मतलब हम जो विश्व को क्या देते हैं, हम लोग क्या सेवा करते हैं, मैं खासकर अपनी अब बात करूं क्योंकि यहां व्यक्तिगत पूछा जा रहा है, तो व्यक्तिगत मैं यही कहता हूं कि मार्गों का सम्मान करें, और जो जिस मार्ग से चल रहा है, अगर वो निष्ठा से चल रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करें, उसमें सहयोग कर सकते हैं तो करें। अगर किसी का निर्गुण निराकार का मार्ग है और कोई सगुण साकार वाले साधक मिले तो उसकी श्रद्धा को खंडित न करें, उसकी श्रद्धा को और पुष्ट करें कि आप लगे हुए अपनी भाव अपने निष्ठा से, ठीक है अब चलें, हम सभी वहीं पहुंचेंगे। विभिन्न मार्गों से नदियां यात्रा करती हुई अंत में सागर में ही मिलती हैं। यह भाव जिस दिन इस जगत में आ जाएगा तभी समन्वय होगा, नहीं तो जितने धर्म के नाम पर लड़ाइयां हुई हैं, आप क्या, अब सेकेंड वर्ल्ड वार आप जानते हैं, आपको तो लगेगा तो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई नहीं है, उसके गहरे में देखोगे एडोल्फ हिटलर ने जो मारा 60 लाख से ऊपर ज्यूज को, यहूदियों को, वो किस आधार पर मारा? ये यहूदी हैं, इनको यही इन्होंने क्रूसीफाई किया था जीसस को हमारे, इनको नेस्तना नबूद कर दूंगा धरती से। उसके गहरे में आप देखोगे तो धार्मिक द्वेष है। आज भारत पाकिस्तान का जो चल रहा है, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है? कभी नहीं, केवल धार्मिक द्वेष है। आज इसराइल पैलेस्टीन का जो चल रहा है, ये सब युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकते अगर धार्मिक द्वेष खत्म नहीं होगा। लग तो रहा है कि राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे धार्मिक द्वेष है। तो बहुत से संप्रदाय लड़के इतना विनाश किए हैं धरती का, तो हम एक दूसरे का जब तक आदर नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, प्रैक्टिकली जरा करके देखें। जैसे मैं इस संस्था में आया हूं, यहां ओम शांति बोला जाता है, मैंने भी ओम शांति से प्रारंभ किया। उसी तरह से मान लो हम इन्वाइट करते हैं, या फोन पर बात हो रही है इस संस्था से हमारी, हम लोगों को जैसे नमो नारायण बोलते हैं हम लोग सन्यासी, तो कितना अच्छा होगा कि कोई मान लो ओम शांति बोल रहा है, कोई सत श्री अकाल बोल रहा है, कोई सिख है मान लीजिए वो सत श्री अकाल, तो हम पता चला है सिख है, इन्हें सत श्री अकाल अच्छा लग रहा है, तो मैं उन्हें कहूं कि सत श्री अकाल और वो हमें कहें ओम नमो नारायण, कितना अच्छा लगेगा, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान। लेकिन बहुत लोग इतने रिजिड होते हैं कि नहीं, हम ओम शांति बोल रहे हैं चाहे सत श्री अकाल बोल रहे हैं, तो नमो नारायण बोल रहे हैं, तो हम अपना ही बोलेंगे। अगर सामने वाले को राम राम पसंद है तो उसकी भावना को सम्मान करो, राम राम जी, और वो बोले आपको ओम शांति जी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यहीं पर अपने साइकिक एनालिसिस करना कि आप कहां खड़े हो, तुम अपने ही उस शब्द के ऊपर रिजिड हो, या सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए वो क्या बोलता है उसका सम्मान करते हैं। तो अगर आप में वो रिजिडिटी है तो उसको तोड़ें और सामने वाले का सम्मान करें। हर आत्मा दिव्य है, बस केवल प्रकाशित होना है। हम आवरण मलक विक्षेप आवरण से घिरे हुए हैं, साधना के द्वारा उसको प्रकाशित करना है। तो हम यही संदेश देते हैं कि हम सबका सम्मान करें, सबके मतलब मार्गों का सम्मान करें, यही मेरा संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ओम शांति।
महाराज श्री ने बहुत सुंदर वक्तव्य स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत किया कि ये विभिन्नता में एकता तभी संभव है जब हम आध्यात्म का स्वरूप सभी में आत्मिक स्वरूप और आत्मिक गुणों की सनातन सत्यता की रक्षा करें, उनको विकसित करने का सम्मान दें और सहयोग दें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराष्ट्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत सुंदर योगदान के संकल्प से इस भारत माँ के भाल को सुशोभित करके गए। और मैं आमंत्रित करती हूँ महंत सागरनाथ जी जो हांसी से आए हैं, वो अपना योगदान समाज में, धर्म में शांति एकता का क्या देना चाहेंगे, इस संत सम्मेलन से प्रेरित होकर वो वक्तव्य अपना हमें रखें। आदरणीय स्वामी महंत सागरनाथ जी हांसी।
ब्रह्मांड की सबसे पावन ध्वनि ओम, आत्मा का स्वरूप शांति, इसलिए आप सभी बोलिए ओम शांति। जरा जोर से बोलिए ओम शांति। आज के हमारे समारोह के जो मुख्य वक्ता थे दादी राजयोगिनी सोम प्रभा जी, उन्होंने कहा था कि आप समाज की बैकबोन हैं और आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा, आप अपनी बोन को सीधा करें, कोई ऐसे है कोई ऐसे है, बिल्कुल सीधा बैठे और बोलें ओम शांति ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही राजयोगिनी बहन मनोरमा दीदी जी, मुख्य वक्ता सोम प्रभा जी और हजारों फुट की ऊंचाई पर हम इस हाल के अंदर बैठे और इस सभा में इस आबू पर्वत के जो हृदय स्पर्शी मेरे बड़े भाई 7 फुट के हैं, जो सब भाइयों में सबसे लंबे, और शिव बाबा जी, दादा लेखराज जी जो अपनी जेब में नारायण जी का फोटो रखते थे, प्रतिमा रखते थे, उसी ही नाम को याद और स्मृति में लाने वाले आदरणीय भाई नारायण जी, महामंडलेश्वर जी, अन्य साधु संत समाज, बहुत ही अच्छा मन संचालन कर रही बहन कविता जी, समक्ष बैठे अन्य साधु के चरणों में प्रणाम, परम पिता परमात्मा की प्यारी शक्ति आत्माओं, ब्रह्म ज्ञान सरोवर और इसके अंदर बीके बहने बीके भाई श्वेत वस्त्र के अंदर एक हंस के रूप में यहां विचरण करते हुए दिखाई देते हैं और भगवान रूपधारी व्यासपीठ की याद दिलाने वाले, महर्षि नारद की याद दिलाने वाले साधु संत इन हंसों के पास ज्ञान चर्चा करने के लिए यहां ज्ञान सरोवर में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। राजयोगिनी सोम प्रभा जी ने कहा कि ये संस्था नारी का बड़ा सम्मान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, हम सब संतों की दृष्टि से आप भी आकलन करके देखिए कि ये नारा तो प्रजापति ईश्वरी कुमारी ईश्वरी विद्यालय का है जो कि नारी का इतना सम्मान किया है, कन्याओं को आगे बढ़ाया है। आज का जो विषय है वर्तमान समाज में शांति और एकता में हमारा क्या योगदान है, जहां शांति है वहां एकता है और जहां एकता है वहां शांति है, ये शब्द यहां की यूनिवर्सिटी ने क्यों चुनना पड़ा, ये टाइटल क्यों देना पड़ा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अशांति, हिंसा, युद्ध की ऐसी स्थितियां बनी हुई है। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि अशांति से क्या होगा, अनेकता से क्या होगा। अशांति से जाति धर्म को बढ़ावा मिलेगा, जाति भेदभाव बढ़ेंगे और आपस में मनमुटाव बढ़ेंगे, हिंसा बढ़ेगी और इस तरह से जब आप धर्मों में जातियों में बढ़ते चले जाएंगे तो ये देश खतरे में पड़ जाएगा और देश हमारे देश की तरफ जो अन्य देश नजरे करके बैठे हैं, जिन्हें इस देश की शांति सुहाती नहीं है, वो इस पर हमला कर देंगे। हमारे युवाओं का रोजगार चला जाएगा, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये विषय रखा कि वर्तमान समाज में शांति और एकता अनिवार्य है। शांति और एकता के लिए मेरा योगदान, मैं सभी में भाईचारा कायम करने की प्रयास करूंगा, संयम और धैर्य से काम लूंगा। अगर आपस में भाईचारे में मनमुटाव होता है तो बड़े धैर्य से, संयम से, समझदारी से, संवाद से उसको हल करने का प्रयास करूंगा। मैं शांति के लिए अपना योगदान उन धर्मों के गुरुओं से भी मिलकर करूंगा जो कि अपने अपने संप्रदायों और पंथों में बटे हुए हैं। हमें यहां सीखने को मिला कि आज तक शायद सभी संत समाज मेरा इस बात का समर्थन करेंगे और क्षमा भी चाहूंगा कि ऐसे ऐसे हमारे जो लाइन के संत हैं कि ऐसे ऐसे गुरु मंत्र जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उस परमपिता परमात्मा का जो मीठा और प्यारा नाम, उसको छुपा कर रखा गया। केवल एक विश्वविद्यालय, एक ऐसी संस्था ब्रह्म कुमारी की जो कि सबको बताया कि परमपिता परमात्मा का नाम तो अति पावन है, मधुर है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, केवल एकमात्र ये विद्यालय है। और स्वर्ग नरक ये वो सब पाखंड से हटा करके सीधा आत्मा और परमात्मा से जोड़ दिया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ये जो कि पब्लिक स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर स्कूल सबको बीच से हटा करके हम सब आत्माओं का एडमिशन कहां करवा दिया, बाबा की यूनिवर्सिटी में करवा दिया, ब्रह्मलोक से करवा दिया। शांति के लिए, भगवान के नाम के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आप सीखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती, उनको सिद्धकरण किया जाए तो उनमें भी शक्ति होती है, लेकिन यहां यूनिवर्सिटी से आप सीखेंगे उस परमपिता परमात्मा कि हम जो प्यारी संतान हैं और हमारा बीच का जो रिलेशन है उसके लिए किसी कठोर वाणी या मंत्र की साधना किसी चीज की आवश्यक नहीं है। यहां की जो बहनें हैं, इन्होंने, इस संस्था ने ये भी दर्शाया है और हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जब किसी धार्मिक संस्था में जाते हैं तो संतों से, गुरुओं से मिलना बड़ा मुश्किल होता है और यहां की बहनें ज्ञान से भरी हुई लबालब, कहीं पर भी, चाहे ज्ञान का पारक हो, सरोवर के किनारे हो, चाहे सभागार हो, कहीं भी आप उनसे ज्ञान की चर्चा कीजिए, कोई बात छुपाने की नहीं है। स्पष्टता से सभी बहनें ज्ञान से भरी हुई हैं और सभी आत्माओं को संतुष्ट करके यहाँ से भेजती हैं। और सबसे अच्छी कला मैंने यहाँ देखी, सभी बहनें मन संचालन कर लेती हैं। संस्थाओं में हमने देखा केवल एक ही हमारा मन संचालक होता है, बार बार उसी को स्टेज पे हम लेकर आते हैं। परिपूर्ण है ये बहनें, सर्वगुण संपन्न हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के नजदीक हैं। तो ऐसे ज्ञान में ये चल रही हैं। और अगर हम जाएं भोजन की तरफ, किचन में बहनें इतने प्यार से खिलाती हैं, दो मिनट बैठने को होंगे डाइनिंग टेबल पे बहनें आ जाएंगी, एक मिनट के अंदर भैया भोजन लेके आती हूँ क्या चाहिए। और एक गुड़ वाला भाई तो यहाँ प्रसिद्ध हो गया, नारायण जी भोजन के बाद गुड़ खिलाता है। मैं अपने छोटी सी एक एग्जाम्पल देकर अपना स्थान लेता हूँ, बहन जी खड़े हैं, भाईचारे की मिसाल, शांति की मिसाल, हम क्या शांति कायम करेंगे? हमने अपनी शांति घर से आरंभ करनी है, अपने परिवार से एकता और शांति को लेकर के चलना है, अपने भाईचारे को कायम करना है। एक संत थे और किसी गांव के एक भाई ने भागवत कथा करवाने के लिए उनको आमंत्रित किया। संत जी वहां पहुंचे, सब जगह निमंत्रण बांट दिए गए, कार्ड छपवा दिए गए, निमंत्रण बांट दिए गए, लेकिन उस भाई ने जो कथा करवाने वाला था उसने अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वो उसकी बनती नहीं थी। और इस बात का कथावाचक को पता चला, उस संत को पता चला, तो उसने कहा कि भाई अपने भाई को निमंत्रण दो। भाई ने कहा कि हमारी तो कई सालों से उनकी नहीं बनती है, संपत्ति के झगड़े को व्याख्यान किया, पैसे का बंटवारे का। लेकिन संत ने कहा कि भाई ये तुम्हारे व्यक्तिगत झगड़े हैं, परमपिता परमात्मा के यहाँ प्रवचन होंगे और भाई भाई एक नहीं होगा तो उस कथा का क्या लाभ होगा, आप उसको निमंत्रण अवश्य दीजिए। भाई ने साफ मना कर दिया। संत ने कहा अगर आपको घृणा है, वहां आप निमंत्रण नहीं पहुंचा सकते, तो मुझे निमंत्रण दीजिए, कार्ड दीजिए। और उस संत ने उस भाई का नाम लिखा और जो प्रेषक उस भाई ने लिख रखा था वो सब काट करके अपना नाम लिख दिया। संत ने अपना नाम लिखा प्रेषक के अंदर, निमंत्रण पहुंच गया उस भाई के पास। अब भाई ने निमंत्रण देखा और नीचे प्रेषक देखा, अरे संत जी ने स्वयं मुझे बुलाया है कथा पंडाल में, बड़ा हृदय गदगद हो गया। अब पत्नी वहां से गुजरी और ऐसे निमंत्रण टेबल पर पड़ा था और उसने देखा कि ये तो उसका जेठ जी का कार्ड है, कथा करवा रहे हैं, नाक ऐसे घुमाया, हम नहीं जाएंगे इनके कार्यक्रम में, अपने पति की भी खिंचाई की, हमने नहीं जाना है इस कथा के अंदर। पति ने कहा कि धर्म पत्नी जी, ये भाई का कार्ड भिजवाया हुआ नहीं है, ये तो संत ने भेजा है, संत का भेजा हुआ निमंत्रण है, नहीं हमें नहीं जाना किसी का भी निमंत्रण हो। रात हो गई, रात्रि के समय सभी सो गए। अब उस भाई के मन में वो बात चल रहा है, वो विचार चल रहा है कि एक संत ने निमंत्रण भेजा है, जैसे बाबा जी ने हमें निमंत्रण भेजा, हम यहाँ पहुंचे हैं। सोचता रहा सोचता रहा, सुबह उठ के उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कथा में जाऊंगा लेकिन वहां प्रसाद नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा और भाई के सामने नहीं आऊंगा, दूर बैठ के एक बार संत के हाजिरी लगा दूंगा, संत खुश हो जाएंगे कि मेरे बुलावे से वो आया है। तो नहीं मानी, फिर भी भाई चला गया। कथा हुई, लंबी कहानी न करते हुए कथा संपन्न हुई, आखिर में प्रसाद बंटना था। प्रसाद वाली जगह जैसे हम जाते हैं हॉल के अंदर, इसी तरह सभी वहां गए श्रोतागण, और वो भाई भी चलने लगा जिसे डिस्पुट था भाई का। अब संत जी मंच से नीचे उतरे तो उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख लिया और उस हाल तक ले गए, डाइनिंग टेबल तक ले गए, बात करते करते जैसे यहाँ के भाई भी ज्ञान सुनाते सुनाते हमें वहां तक अक्सर ले जाते हैं। और भोजन करने के लिए कहा और उससे कहा कि एक रसगुल्ला प्लेट में लेकर के आओ, दूसरे भाई से कहा कि मैं तेरे हाथ से लूंगा कि तुम भी एक रसगुल्ला प्लेट में लेकर के आओ। उधर वो चला गया, उधर वो चला गया। अब बीच में संत जी खड़े हैं, वो उनको खिलाने लगे संत जी को, और वो भी खिलाने लगे संत जी को। संत जी बीच में से पीछे हट गए, दोनों सामने आ गए और कहा कि आप इसको रसगुल्ला खिलाएं, आप इसको रसगुल्ला खिलाएं, तभी मैं आगे भोजन करूंगा। तो दोनों भाइयों का प्रेम बढ़ा, आपस में भाईचारा बढ़ा, शांति बढ़ी, एकता हुई। तो इस तरह से हमने शांति और एकता बढ़ानी है, यही संदेश प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने यहाँ से दिया है, यहाँ की बहनों ने दिया है, हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत सुंदर उदाहरण के साथ आपने रखा। तो महाराज श्री ने हम सबके समक्ष जहाँ चाहा वहाँ रहा, असंभव कुछ नहीं है। चुनौतियां तो अवश्य हैं, लेकिन यदि संत वृंद संकल्प को धारण कर लेंगे कि हमें शांति और भाईचारा एकता को लाना है, तो इतने मास्टर ज्ञान सूर्य के समान ऊर्जा से भरपूर संत इस योगदान को व्यक्ति के मन में अवश्य उतार सकते हैं। ऐसी आशा की किरण महाराज श्री जी ने हम सबके बीच में रखी। हम बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं महंत सागरनाथ जी हांसी का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर कि वो किस प्रकार से अपना योगदान समाज को देंगे। महाराज कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर। मेरा सभा में विराजित सभी भाई बहनों से अपील है कि आप बीच में जो सीट खाली हैं उन पर अपना स्थान लेंगे तो ये गुलदस्ता मंच को बहुत सुंदर लगेगा। जो दूर दूर पीछे दाएं बाएं बैठे हैं वो बीच की सीट पर अपना आसन ग्रहण कर लें तो आपकी सभा का सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो सभी भाई बहन थोड़ा परिवर्तन करें और महाराज श्री को सुने।
उस परम पिता परमेश्वर भगवान शिव को माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए और आप सभी के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा की संतानों को आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार करें। अति आदरणीय अति पूजनीय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी, सोम प्रभा दीदी जी, कविता दीदी जी और साथ ही ब्रह्मा कुमार तपस्वी राजयोगी जिन्होंने हमें यहां कई बार आने का निमंत्रण दिया और हमारा कान पकड़कर लाने की बात भी करते हैं, वो नारायण भाई जी, इन सभी के लिए करतल ध्वनि तो बनती है। अक्षर से शब्द बनता है और शब्दों में एक होती है मात्रा, और अगर मात्रा ही गलत हो जाए अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मल और माल और माला, मल माने वेस्टेज गंदगी, माल मैंने कोई सामान, और माला चाहे वो पुष्पों की माला हो या हमने पहनी हुई माला हो, मोतियों की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो। इसी तरह से कल और काल, कल माना है जो बीता हुआ कल और आने वाला कल, काल मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर एक विनम्र निवेदन है मेरा आप सभी से और सभी संतों से भी कि यहां पर पति और पिता इसका अंतर जाने। पति अलग है पिता अलग है, यहां शब्द है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी भी नहीं है और प्रजापति भी नहीं है। मात्राएं से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो कृपया माताओं का सभी लोग, मेरा विनम्र अनुरोध है कि संत वृंद और आप सभी ध्यान रखेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहेंगे। बात ईर्ष्या की हुई थी, ईर्ष्या की प्रकाष्ठा क्या होती है। एक बहुत बड़े व्यापारी नाहन में हिमाचल, उनकी पत्नी और उनकी जेठानी आपस में बड़ी ईर्ष्या रखती थी। देवरानी ने पूजा की, भगवान ने कहा वर मांगो। अब ईर्ष्या वाला वर मांगेगी तो क्या होगा आप देखना। उसने कहा कि जो मुझे मिले इसे दुगना मिल जाए। कहना तो यह था कि मुझे, यानी जो जितना उसे मिलता है उससे दुगना मुझे मिल जाए, लेकिन मुंह से निकल गया कि जितना मुझे मिले मेरी जेठानी को दुगना मिल जाए। अब उसने मांगा एक नौकरानी, उधर दो नौकरानी, इधर एक कार उधर दो कार आ गई, इधर एक महल मांगा उधर दो महल आ गए, इधर एक सोफा मांगा उधर दो सोफे आ गए। बड़ी परेशान हो गई कि क्या करूं क्या करूं। अब आती है ईर्ष्या की प्रकाष्ठा। जब उससे नहीं देखा गया तो बोली मेरी एक आंख फूट जाए मैं तो एक आंख से काम चला लूंगी, सामने वाली की दो गई। फिर कहने लगी मेरा एक कान कट जाए, उसके दोनों कान कट गए बेचारी के। कहने लगे मेरी एक टांग टूट जाए मैं तो एक टांग से काम चला लूंगी, जेठानी की दोनों टांगें टूट गई। अब दोनों टांगें जिसकी टूट गई वो जाएगी कहां। तो कहने लगी मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, गड्ढा खुद जाए, दूसरी के घर के आगे दो गड्ढे खुद गए। लेकिन ये एक टांग पे चल सकती थी, वो चल नहीं सकती थी। एक दिन ये डंडा लेके बाहर निकली, डंडा लेके बाहर निकली, फिसली और सीधा खाई में। ईर्ष्या की प्रकाष्ठा है ये। यहां पर हमें यह तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन क्या वास्तव में भाई भाई हैं? अगर भाई भाई हैं तो फिर कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। नहीं है भाई भाई, ध्यान देना चाहिए हमें। एक इंसान के अंदर भावनाएं हैं, वो भावनाएं चाहता तो है प्रेम करना, लेकिन देखते देखते समाज को दूषित होते हुए, समाज को नैतिक मूल्यों के पतन वाले समाज में रहते रहते उसके भीतर भी ईर्ष्या की भावना आ गई है, घृणा की भावना आ गई है। आपने यहां पर ब्रह्मा कुमारी इसका ध्वज देखा है, उस ध्वज में केंद्र में एक बिंदु है जिसे उन्होंने कहा शिव केंद्र में, और पास पास जो किरणें फूट रही हैं वो गुणों की प्रतीक हैं। बहनों ने हमें गुण सिखाए बताए करके दिखाए। यहां पर प्रेम की प्रकाष्ठा है या नहीं है, है तो जरा हाथ खड़ा करें। किसी बहन या भाई के चेहरे पे आपने उदासी देखी? आप किसी भी भाई बहन को यह कह के देखो कि मुझे एक कप कॉफी लाके दे दे, वो कहीं से भी लाए आपको लाके देगा। आप कहें मुझे दो केले चाहिए, कहीं से भी लाके दे वो आपको देगा, और चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। आज बहन जी ने सुबह बताया ना, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, ऐसे भी ऐसी शक्ल होनी चाहिए, है ना। तो गुणों की खान हमें यहां सिखाई जाती है कि गुणों को धारण करना, प्रैक्टिकल कैसे धारण करना। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हमारे संतों में भी बहुत बड़ी ईर्ष्या है, राजनेताओं में ईर्ष्या है। सोचते हैं राष्ट्रपति मरे तो उपराष्ट्रपति सोचता है कि मर जाए ये, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। संतों में भी यही हाल है, ऊपर वाला मरे तो मुझे पद आगे का मिले, मुझे पद आगे का मिले, मैं पूरा मठ संभाल लूं, मैं मठाधीश्वर हो जाऊं। ये वास्तविकता है। ऑफिस कार्यालय में किसी में जाए तो जो छोटा बॉस होता वो सोचता है बड़ा बॉस कब मरे, दूसरे वाला सोचता है ये कब मरे, छोटा बाबू सोचता है बड़ा बाबू कब मरे, एक कांस्टेबल सोच रहा है मैं हार्ड कांस्टेबल बनूंगा, ऊपर वाला जाए, ये तो हटे किसी तरह से। यानी हर आदमी कल्पना क्या करता है, दूसरा चला जाए, मर जाए, मैं उसकी जगह पे आ जाऊं। ध्यान रखें, हमें भी तो उसी रास्ते पे जाना है, कोई हमारे लिए भी तो पीछे कल्पना कर रहा होगा ना कि ये जाए। यहां पर जो प्रेम सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, इक्वालिटी, समानता, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक बार दादी प्रकाशमणि जी को मैंने कहा दादी जी आपका कॉटेज देखना है। बोली चले जाओ। मैंने कहा दादी जी वहां लॉक लगा होगा। अरे जाके तो देखो, सब खुला है, जाके देखो, न जान न पहचान उस समय। दादी कहती है जाओ। समानता, प्रेम, प्यार, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना, ये सब सिर्फ एक ही स्थान पे मैंने देखा है, और वो स्थान है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सिखाता है हमें। मैंने ध्वज की बात की थी, गुणों के ध्वज के नीचे सभी ध्वजों को आना होगा, आना चाहिए। हम लोग यहां से अपने अपने मत मतांतर रखें, अपने अपने मठों का रखें, व्यवहार रखें, लेकिन यहां आकर हम गुण तो ले लें। कीचड़ में अगर कोई 500-500 के नोटों की गड्डी पड़ी हो या सोना पड़ा हो तो हम कीचड़ में से भी उठा लेते हैं, तो कम से कम यहां आके इन बहनों और भाइयों के अंदर जो गुण हैं, गुणों से ओतप्रोत हैं, वो गुण तो ले लें। उस समय हम ये ना सोचें कि मेरा पद आचार्य महामंडलेश्वर का है, मेरा महामंडलेश्वर का है, मैं पीठाधीश्वर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं मैनेजर हूं, मत सोचें मैं जज हूं, कोई नहीं, यहां सब बराबर है। यहां बराबरता, समानता सिखाई जाती है, और इस समानता के लिए मैं अपने संत वृंदों की ओर से, समाज की ओर से इनको नमन करता हूं, इनको वंदन करता हूं, और ये आशा करता हूं कि हम भी यहां से इन गुणों को लेकर जाएं, जो ध्वज में गुण है आप नोट कर लीजिएगा, उन गुणों को लेकर जाएं अपने जीवन में, और जिस तरह से एक दिया हजारों दियों को प्रकाशित कर सकता है, बुझे हुए दियों को प्रकाशित कर सकता है एक दिया, उसी तरह से हम भी यहां से प्रज्वलित होकर जाएं और पूरे विश्व में अपना दिया लेकर सभी दियों को प्रज्वलित करते हुए जाएं, ताकि इन गुणों की रोशनी जो बहनों ने सोची है वो पूरे विश्व में फैल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। एक बार बोलिएगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम बड़ा पवित्र शब्द है, बड़ा पवित्र मंत्र है, सभी मंत्रों के आगे यही लगता है, ध्यान रहे। इसलिए ओम शांति कहना शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मेरा बाबा, तेरा बाबा, सबका बाबा, वो है शिव बाबा। धन्यवाद।
बहुत सुंदर संदेश हमारे कमल किशोर स्वामी जी ने दिया। आपने बहुत सुंदर जो एक शब्द था प्रजापिता और ब्रह्मा कुमारी, उनको बहुत सुंदर रूप से हम सबके सामने विजुलाइज कराया, और उन्होंने हमें नकारात्मकता तामसिकता से दूर जो वातावरण यहाँ में नहीं मिला, उसका मूल मंत्र, उसका मूल चाबी हम सबको खोज कर दी, वो थी सतत प्रगति, आत्मा की परमात्मा से जोड़कर अध्ययन और राजयोग का प्रभाव, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां। और बहुत सुंदर आह्वान किया कि हम सब कुछ हैं, जो कुछ हैं, अपने मठ के, अपने पंथ के, अपने समाज के, अपने अखाड़े के, वो हम सर्वोपरि हैं, वो रहेंगे, लेकिन उस जगत निहंता परम ज्योति महाज्योति, जिसके समक्ष हम कहते रहे तम सोमा ज्योतिर्गमे, उसके सामने अपने अंधकार को दूर करके, अपनी तमो गुणता को दूर करके, सतो गुण को उससे जोड़कर सारे विश्व में शांति, एकता, भाईचारा लाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूब आदरणीय भ्राता कमल किशोर जी ने अपना सहयोग हम सबके समक्ष रखा और हम सब भी प्रेरित हुए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहती हूँ, श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज जो करनाल से हमारे बीच में आए हैं, वो अपना योगदान अपने मठ पंथ समाज क्षेत्र से समाज को शांति स्थापना में क्या करेंगे, अपने सारगर्भित अमृत वचन से प्रस्तुत करें। महाराज श्री राघवानंद जी महाराज करनाल।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा, आपके सबके हृदय में अपना ही स्वरूप आप होता हुआ मैं उस सबके भीतर बैठे उस परमपिता को नमन करता हूं। अभी कमल किशोर जी ने बात कही, इनका नाम ही कमल है। अथाह सागर में कमल की उपमा है, और हमारे यहां एक बात भी चलती थी, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल पत्रवत रहने की कला ही अध्यात्म की कला है। पूर्व वक्तव्य में थोड़ा संकेत दिया था, हमारा वास्तविक स्वरूप ही परमात्मा का है, और अध्यात्म है जो जैसा है उसे वैसा अनुभव करना। अच्छा, हम चाहते क्या है? शांति। तो शांति बाहर है कि भीतर है? शांति है, लेकिन आप शांति को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। आप आत्मस्थ न होकर शरीरस्थ है। हमारे यहां एक बहुत सुंदर बात कही है, देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है, सब इसके पुत्र ये सबका बाप है। आज हमारी समस्या क्या है? देह के वजह से है, आत्मा के वजह से नहीं है। ज्यों ज्यों स्थिरता आती है त्यों त्यों शांति दर्शाती है। शांति आपका स्वरूप है। देखो, बाहर आपका 5 करोड़ का बंगला है, ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन जब विश्राम प्राप्त करते हो तो क्या होता है? आपके पास होता है कुछ? जो भी आप मान बैठे हो मैं मंडलेश्वर हूं, जो भी उपाधि है, निद्रा में उपाधि नहीं होती है। मैं राघवानंद हूं, मैं मनोरमा जी हूं, मैं माउंट आबू में हूं, ये दिखने वाला दृश्य निद्रा में नहीं है। इसीलिए कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही, मतलब समाधि है। देखो, निद्रा से कोई जगाए अच्छा नहीं लगता, क्या बात है? यही नहीं हम समझना चाहते। परम सत्ता से हम कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ उसको समझते नहीं है। मैं कभी कहा करता था, जिस शक्ति से चांद और तारे चलता ये संसार है, उसी शक्ति का तन मन में रहता सदा विहार है। देखता सुनता करता धरता बोलता जन उसी ज्योति को प्यारे, फिर तेरा उद्धार है। जानना अपने आप को प्यारे, राह है कल्याण की, आओ प्यारे तुम्हें दिखाऊं झाकी आत्म ज्ञान की। इसी समय अभी हम सतर जाऊं जड़ काटू अज्ञान की। ये जो अज्ञान है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। अच्छा, निद्रा में कुछ होता है क्या? निद्रा में मान्यताएं गलित हो जाती है। हम न तुम दफ्तर गुम, तो ऐसी अवस्था ध्यान में होती है। शांत आपका स्वरूप है, इसलिए पहले लक्त में एक संकेत दिया था, जब हम आए संसार में तो कहा ये बच्चा तो भगवान का रूप है। क्यों? राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी, कोई भी कलेश नहीं। राग द्वेष कहाँ है? मान्यता में। मान्यता एव संसार तन्नाशो मोक्ष उच्यते। थोड़ा सा संकेत कि आपका योगदान क्या है। अब पटेल नगर से जो बालिकाएं आई है, जो थोड़े देर के लिए मनोरंजन की झांकी प्रस्तुत करती, मैंने पूछा बालिका को आपकी अवस्था क्या है तो बारह बताई, और मुझे भी करनाल से जो ले आई बिमला प्रेम बहन जी के इससे, वो भी 13 साल की थी, इसी कार्यक्रम के लिए आई थी, स्कूल के निमित्त से कार्यक्रम के लिए आई, और वो आज तक आ रही। आप 70-60 साल 65-70 की होगी मेरे ख्याल से। तो ये संस्कार है, कार्यक्रम में आई और सच बताए, आज के अशांति के वातावरण में कहीं भी मन टिके ऐसा स्थान कहीं नजर आता? अपने अपने आपसे पूछो जरा आप। और यहां आकर आते ही समानता का भाव, सरलता का भाव, अपनेपन का भाव, और कहते भी है बाबा कि अपना घर समझ के, और सचमुच परमात्मा अपना आपा है। लेकिन ये जैसे आज लोग मोबाइल से लट्टू हो गए ना, मोबाइल छोड़ने को राजी नहीं, ऐसे देहांकार को भी छोड़ने को राजी नहीं हम। ये देहाध्यास ही आपके दुख का कारण है, और देहाध्यास गलेगा तो ध्यान से। ज्यों ज्यों स्थिरता आती है त्यों त्यों शांति दर्शाती है, और फिर ब्रह्मानंद प्रकट होता है। तो शांति आपका स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, और कोई भी विकार बाहर से आया है इसे बाहर रख लो, आपके साथ मत जोड़ना, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, निर्विकल्प है, निराकार है, तू अजन्मा है, नहीं लिप्त है, तेरे संग से सब रहित है। आपका किसी से संग नहीं है, आप असंग हो, और गीता में आता है असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, असंगता को, असंगता से हम शांति को प्राप्त होते हैं। और उस शांति का संदेश आप ले सकते हैं, लेकिन आपका हृदय पवित्र हो। दो चीजें ध्यान रखना, आपका आहार और आपका विचार ठीक है तो आपका लक्ष्य आपके पास आपको सहज प्राप्त है। चेतन अमल सहज सुख राशि है, अरे विचार सागर है, ये आपका अपना स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ समय को देखते हुए वाणी,
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता। पधारे हुए करनाल से भ्राता जी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी अपने योगदान की। परमात्मा पिता भी कहते हैं ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है सोल कॉन्शियस। अपने को देह से भिन्न आत्मा स्वरूप से कर्म योगी बनना सीख जाएं, तो ये सारे विषय विकारों का, तामस का अंधकार हमसे दूर हो जाएगा, और जितना हम इससे दूर रहेंगे तो हम अपना समाज व्यक्ति को महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। और अब मैं चल रही हूं उस परम मर्यादा पुरुषोत्तम की कर्म भूमि, जन्म भूमि की तरफ, जिसको अयोध्या कहा जाता है, और वहां से पधारे हैं हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय करपात्री श्री जीयर स्वामी जी महाराज। उनसे मैं विनम्र अनुरोध करती हूं कि वर्तमान समाज में शांति एकता की स्थापना में आप अपना योगदान किस प्रकार देना चाहेंगे आदरणीय करदात्री जी महाराज से मेरा करबद्ध विनम्र अनुरोध है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज यहाँ पे अपने संत मंडली के बीच में आने का सौभाग्य मिला। सारे संतों से चित तो नहीं हूं, लेकिन सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। आए हुए हैं तमाम हमारे ओम शांति की हमारी बहने भाई, उपस्थित संत समाज को अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी बैठे बैठे मैं चिंतन कर रहा था, सोच रहा था कि वास्तव में शांति किसे कहते हैं। प्लीज यू डिफाइन इन योर हार्ट व्हाट इज शांति। प्लीज यू डिफाइन इन योर हार्ट, आप अपने हृदय से परिभाषित कीजिए कि शांति किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से जहां आपके शान की इति हो जाए, दैट इज कॉल्ड शांति। मैं जगत गुरु हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मैं श्री श्री 1008 हूं, मैं IAS हूं, मैं PCS हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं उपराष्ट्रपति हूं, मुख्यमंत्री हूं, जहां ये लगा रहेगा तहां शांति नहीं आएगी, क्योंकि ऊंच नीच भेदभाव की सीढ़ी पे आप बैठे हैं। हमारा मानस बोलता है कि सब नर करही परस पर प्रीति, जहां सब लोग आपस में प्यार करें वहां शांति आएगी, और शांति तभी आएगी जब आपके शान की इति हो जाएगी। जब तक शान बना रहेगा तब तक शांति नहीं आएगी। ब्रह्मा कुमारी कोई जाति विशेष का नाम नहीं, उनका नाम भी नहीं है, कोई जातता का भी पोषण नहीं है। ब्रह्मा की बेटी वही हो सकती है जो कुरीतियों को मारी हो, कु रीति को जो मारी हो, जो कुरीति को मार करके सद्भावना के पग पे चले, वही तो मेरी ब्रह्म कुमारी है। अभी हैदराबाद में मैं गया था, डॉक्टर उषा दीदी ने मुझे बुलाया, कुछ लोगों ने खंडन किया, मंडन किया। एक तो ऐसे बोल दिए कि ये लोग मानते ही नहीं है। हमने कहा जिस समाज के लोग लक्ष्मी नारायण के उस स्वरूप को 2400 घंटा अपने हृदय में लेके चलती हैं, यदि आप उसकी बगावत करते हैं तो बताइए आप किस संप्रदाय के हैं। संप्रदाय ही मतलब होता है, सम मतलब बराबर, प्रदाय मतलब सबको बांटा जाए, यानी बराबर रूप में सबको जाना जाए, दैट इज संप्रदाय। संप्रदाय में सम मतलब बराबर, प्रदाय मतलब सबको सम्मान दिया जाए, उसका नाम संप्रदाय है। संप्रदाय किसी खंडन मंडन का नाम नहीं बा। ये कौन बोलेगा? आप नहीं बोल सकते हैं, इस युग के लोग नहीं बोल सकते हैं। मुझसे पूछिए धर्म के लिए कितने लोगों ने शहादत दिया है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है कोनों से बिलकती मांग है अभी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। धर्म के लिए जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, धर्म के लिए जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, हमारा धर्म सर्वोपरि है। मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर APJ कलाम जैसे राष्ट्रपति हो तो मुझे उनके चरणों का भी वंदना करनी चाहिए।
अगर पीर अब्दुल हमीद जैसा व्यक्तित्व हो तो मुझको उसका भी आदर देना चाहिए। हां, एक आवश्यक है, शांति अपनाइए, शांति अपनाइए, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, मेरे पंथ के ऊपर, मेरे ईश्वर के ऊपर, मेरे संप्रदाय के ऊपर, मेरी मां के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर अगर कोई अपशब्द बोलता है तो वहां पे अच्छा है घर में बैठ करके, जगशाला में बैठ करके, लोगों को बैठ करके बोलिए हम सब एक हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति का नारा लगाइए। लेकिन जब बाहर निकलिए, मेरी बहन बेटियों के ऊपर कोई आक्षेप करता हो, देश के ऊपर कोई आक्षेप करता हो, राम के ऊपर कोई आक्षेप करता हो, ब्रह्मा कुमारी कोई ऊपर आक्षेप करता हो, प्रजा पिता को ऊपर आक्षेप करता हो, तो हम मुझे भूलने की भी आवश्यकता है कि ओम शांति हम तब तक कहेंगे जब तक आप ओम शांति के पग पर चलेंगे। यदि आपने बगावत किया तो ओम शांति नहीं, हम बोलेंगे ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति की आवाज लगाएंगे ताकि हम लोग की देश की एकता अखंडता मेरी बरकरार बनी रहे, तब ओम शांति के हम पथ प्रदर्श हो सकते हैं। मेरे बाप आवश्यकता है। हैदराबाद में तमाम लोगों ने खंडन किया, हमने कहा मैं आह्वान करता हूं, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे उर्दू में हो, आइए मैं साथ साथ करूंगा। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया ना मिलना चाहता था, अयोध्या राम जन्मभूमि में कुछ ऐसे लोग चले गए जो शूद्रवत थे। हमने कहा महाराज ये काम कीजिए, एक आदेश पारित कीजिए, ये मस्तक जो है ब्राह्मण है, ये सीना क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है, एक आदेश जारी करिए हमारे हिंदुओं में जो लोग वहां जाए सबका पैर काट लिया जाए क्योंकि पैर शूद्र है। बाप क्या बात करते हैं बाप, राम ने शबरी का जूठा बेर खाया है। अगर ब्रह्म कुमारी की बेटियां, ब्रह्म कुमारी की बहनें, ब्रह्म कुमारी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि राम का जीवन चरित पढ़ने से अच्छा है कि राम के पद चिन्हों पर चलो, तो इन पद चिन्हों वाले चलने वालों को स्वागत करना चाहिए। मेरे बाप आप नहीं कर पा रहे हैं, आवश्यकता है करने की, धर्म में संप्रदाय में वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये साकार हैं, ये निराकार हैं। मैं निराकार वालों से पूछना चाहता हूं, पहले जो डिफाइन हुआ था निराकार, निर्गत आकार है या सच्चा निराकार है, जिससे हम लोग निकले हुए हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा स्वरूप है, मुझे उसकी वंदना करनी चाहिए क्योंकि हम सब लोग उसी से निकले हुए हैं। निर्गत आकार है या सच्चा निराकार है, जिससे हम लोग निकले हुए हैं, निर्गत आकार है या सच्चा निराकार है। मैं आज संतों को देख करके बहुत अभिभूत हूं, आपने एकता का परिचय दिया है, हम सब एक हैं, कोई अनेक नहीं है। और हमारे यहां तो आया है कि परम प्रकाश रूप दिन राति और ना चाहिए दिया घृत बाती। आपका हृदय स्वरूप है, ये ज्योति देख रहे हैं ना, शिव स्वरूप, ये शिव कल्याण है। शिव क्या है, ये कल्याण करता है और कल्याण के मार्ग पे हम लोगों को चलना चाहिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं, विवेकानंद का स्वरूप है। शिकागो में विवेकानंद जब बोल रहे थे तो नीचे 16 वर्षीय बालिका बोली विवेकानंद आई आस्ट वन क्वेश्चन प्लीज यू गिव मी जस्ट कम हियर। विवेकानंद जब सामने आए, विवेकानंद ने कहा प्लीज रिमेम्बर योर क्वेश्चन, तो 16 वर्षीय बालिका शिष्य ने निवेदता ने कहा आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, मुझे आपके समान बेटा चाहिए। धन्य है भारत का बेटा विवेकानंद, आके पांव पकड़ लिया, कहा मेरे समान बेटा हो ना हो आप मेरी मां बन जाइए, मैं आपका बेटा बन जाता हूं। ये हिंदुस्तान है मेरे बाप, ये करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज संतों से करना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत गया था, बहुत मतभेद है संतों में, शाह में मतभेद है, वैष्णव मतभेद है, साकार में मतभेद है, निराकार में मतभेद है, ये मतभेद आप क्यों पाल रहे हैं? क्या देश को खंडर करना चाहते हैं आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं आप? देश को आपने मजाक बना रखा है देश को आपने। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आइए जवानी में साधु बनिए, निकलिए इन संप्रदायवाद वालों का, इन खंडन मंडन वालों का, धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने वालों की बगावत होनी चाहिए। एकता के सूत्र में बंधिए, तब आप विश्व का गुरु बन पाएंगे, न था आप विश्व का गुरु नहीं बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, सबका अभिनंदन, सबका वंदन। आप एक हैं, ओम शांति के साथ चलें, एक साथ चलें, एकता बनावे। आप लोगों से कृपा पाना है, जहां आवश्यकता पड़ेगी तहां ये जगत गुरु जी और स्वामी कृपात्री आपके साथ रहेगा, खुल के साथ रहेगा, लेकिन देश को नहीं मिटने देगा, धर्म को नहीं मिटने देगा, और जो है देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज आपकी आवश्यकता है, मैं आपके साथ हूं, मैं खुला समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
धर्म रक्षति रक्षा का संदेश, सनातन संदेश आपके उद्बोधन में हमने पाया कि आप अनेकता में एकता को लाते हुए जहां देश की अखंडता और मानव की शांति या बहनों का कहीं अपमान तिरस्कार होगा वहां आप अपना योगदान देंगे और पुनः समाज में और व्यक्ति में शांति एकता को स्थापित करके भारत की अखंडता एकता सनातन सत्यता संस्कृति को स्थापित करेंगे। ऐसा शुभ संदेश हमारे आदरणीय कर्पात्री जी महाराज ने अयोध्या से आकर दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ हमें चरित्रवान गुणवान श्री लक्ष्मण जैसे भी चाहिए, जो माँ सीता के कानों के आभूषण को ना पहचान सके, माँ सीता के चरणों की पायल को ही जान सके। ऐसे मानव मन के अंदर चरित्र और शांति एकता को हमारा ये संत वृंद ये सुंदर मंच करेगा, ऐसा संदेश आपके उद्बोधन से मिला। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहती हूँ आचार्य श्रीमद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, जो दक्षिण भारत भुवनेश्वर से पधारे हैं, सचिव हैं ऑल इंडिया साधु समाज के, उनसे विनम्र अनुरोध है कि सार गर्भित संक्षिप्त अमृत वचनों में अपना योगदान प्रस्तुत करें, क्योंकि आदरणीय बहन जी को हमें सुनना है।
जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्म न च मे निवृत्ति, तोया श्री गुरुदेव हृदि स्थितेन यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि, यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि। समस्त सभी बोलिए प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुबह से अब तक सुन रहे सभी, अभी जीवर स्वामी जी महाराज जी के भी सुन रहे, सनातन धर्म के भाव, देश प्रीति, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से और राजयोग एडुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जो अभी चल रहा है, अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान, इसका विषय जो आज है चर्चा है विश्व एकता। हम एक है, सभी एक है, जो भाव है ऐक्य भाव है, तो कैसे है ना, वैराग्यम एव अभयम। किसके पास वैराग्यता है, जिसके पास अभय है, जो भय करता है मतलब वैराग्य आए नहीं। देखिए इतने सारे 140 देशों में मैं तो सबसे पहले दिखा नहीं था, सुना खब सुना था, जब दिखा तो इतने भाई बहनों ने ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारिणी ने काम कर रहे, हम इतने जितने आचार्य हैं मैं आज नमन करता हूं इस मंच को, क्योंकि दीदी दादी जो बोल रहे सबसे पहले, और जितने दीदी है ने ब्रह्म कुमारी बहनों ने और ब्रह्म कुमार राजयोगी राजयोगिनी भाइयों ने इसके साथ मंच पर बैठे हुए सभी आचार्यों महामंडल से संत महंत वर्य श्री चरण में नमन करता हुआ, मंच के नीचे भी बैठे हुए सभी महापुरुष महानुभव के श्री चरण में नमन करता हुआ और सभी भाई बहन की स्वागत करता हुआ, आज अंतिम सत्र में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए हमारा गुण कहां खो गई। नारायण जब थे वो हिरण्यक था, चार अक्षर का वो दानव था। श्री राम आगे रावण था तीन अक्षर का। जब श्री कृष्ण आगे दो अक्षर का कौन सा था। अभी कलयुग में मैं हूं। जब ओम कार पुकार है ओम, तो ओम हे ओम हे जीवन हमारा, ओम प्राण धार है, तो हम पुकार रहे ओम। तो इसी अभी कौन है राक्षस, मैं जब है तो इसीलिए बुरा कर देता है सबको मैं के बजे। तो मैं इसीलिए तो आप जितने चर्चा कर रहे सभी महानुभव महापुरुष में करके गए, तो आपके अंदर में भी यही भाव है। मैं किस लिए घुस जाता है ना, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभ सर्व ग्रंथ नंग प्रमुख। आहार शुद्धि होता नहीं, कर्म है। इसीलिए हम बोल ले इतने चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इतने महापुरुषों ने, कथावाचक ने, महात्मा ने, जगत गुरु ने इतने आशीर्वाचन कर रहे, और उससे भी परे भी हमारे भाई बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी जी भाई बहनों ने इतना कर रहे, फिर होता नहीं क्यों। ज्यादा तो बोलते हैं, ज्यादा तो सुनते हैं, लेकिन अमल करना, कार्य में लगाना कम होता है। क्यों ना, हमारा धैर्य कहां खो गई, हमारा आहार शुद्धि नहीं है। तो आहार में सब कुछ होता है। तो आज मैंने आके देखा जो यहां शुद्ध सात्विक आहार, बाजार का खाना नहीं देते है, यहां का बना हुआ भोजन मिलता है। ये भोजन ही सात्विक प्रभाव दिलाता है। सात्विक विचार लाने ही जब न लाएंगे तब हमारा सात्विकता प्रभाव प्रकट कैसे होगा। जब सात्विकता भाव प्रकट होगा तब एकता आएगी, हम सारे एक हैं। ये विचित्रता के मध्य में ये विचित्र सृष्टि है, तो ऐक्य भाव कहां पैदा होगी। तो इसलिए भगवत गीता में लिखा हुआ, समय भी नहीं लड़ता समय के हिसाब से, क्योंकि क्या बोल रहे, आयु सत्य बड़ारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। कटु अम्ल अति उष्ण अतिरिक्ष कटाक्ष विदाहीन आहार राजसा दुख सुखाम जात जामम गतरसं पुतिंग पचि शीतंग चजत उचिष्ठं अमेधं अपि भोजनम तामस प्रियम। ये जो तामस खाद्य चोर डकायत कार्य करेगा, उस गुण है। और जो रोग व्याधि क्रिएट करते हैं, बीमार पड़ते हैं, ये है जितना रुख्य खाते हैं। ये भगवत गीता में श्रद्धाते विभाग में देखिए 8, 9, 10 वाले श्लोक है। और आयु जो दिखने का उज्जवल है, जो आयु प्रदानकारी है, बड़ायनाने करी है, यह समर्थ करेगा। हम जिस की बात पुकार रहे, जो हम एकता कैसे रहे, जो सात्विकता गुण पैदा होगी तो तब एकता होगी। जब तक सात्विक गुण नहीं आएगा तो एकता, इसीलिए ये सारे गुण को ध्यान देना चाहिए। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभ है सर्वग्रंथिनां विप्रमुख्यः। और एक बात है, युग युग की बात कर रहे, एक मिनट पूरा करता हूं, तो समय की है। तो एकता बहनों ने कर रहे, भाइयों ने कर रहे, इतनी हजारों ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी है, समझे कि वो तो ही पुकार रहे ओम शांति। शांति कब पैदा होगी, ओम है ना, ओकार ब्रह्म उकार विष्णु, ओकार ब्रह्मा उकार विष्णु मोकार महेश और चंद्रबिंदु है शक्ति अकार, ठीक है। तो इसीलिए ओकार उकार मोकार, तो चंद्रबिंदु जो है ये शक्ति है, तो इसीलिए तो ओंकार है। तो ओं को पूछा रहे शांति, सबके अंदर में ओं पैदा करो। वो महाराज जी बोल रहे आप उल्टा पलटा क्यों, नहीं ऐसे बात जो रखा गया तो नीचे की अपान वायु की क्रिया बोल रहे। हम क्या बोल रहे, अहं वैश्वान और भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। अब अपान वायु नीचे के हिस्सा है, अकार है, ऊपर का हिस्सा उकार जो ये है प्राण वायु है, समान वायु बीच में है। तो बीच में जो समान वायु है ये युक्त हो जाने से क्या होगा, जो भी खाएंगे हजम हो जाएगा। और ऊपर हिस्सा है उदान वायु, पूरा शरीर में ज्ञान वायु काम करता है, जो मेडुला प्लेक्सस से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए योगों में क्या बोला गया, संयोगो योगो इत्युक्त जीवात्म परमात्मनः। तो हम सबका उद्देश्य क्या है ना, परमात्मा शक्ति मिलान, जीवात्मा के बा नाद बिंदु का संयोग है, ये तो है बात है। चलिए सारा विषय भी है, मैं फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ भाई बहनों की और सारे यहाँ के जो ज्ञान सर्वर में और सभी महात्मा के चरण में फिर भी नमन वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, मेरा वाणी को ही विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए, भारत माता की, विश्व का, प्राणियों में, ओ हर हर महादेव।
बहुत सुंदर, आपने धर्म का उद्घोष किया और अपनी तेजस्वी वाणी से हम सबको अपने योगदान की सात्विकता को प्रकट किया कि वो सात्विकता से भरपूर होकर अपने सारे साधु समाज के अंदर और अपना महत्वपूर्ण योगदान इस आध्यात्म की ज्योति को जगाएंगे और सभी के द्वारा समाज में शांति एकता का योगदान करेंगे। ऐसे उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दिया और अब मैं आ रही हूँ कार्यक्रम की उस सुंदर दिशा की ओर, सुंदर मार्गदर्शन की ओर, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं, तपस्वी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी, जो हमारे धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं। आदरणीय दीदी का 1968 से इस ईश्वरीय ज्ञान का सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप साहित्य और साधना की धनी हैं। आप अनेक दूर संचार माध्यमों से संस्था की गतिविधियों को समाज में और विश्व में प्रवाहित करती हैं। 1970 से आपने मानव कल्याण के लिए, मानव पीड़ा को दूर करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन एवं कुशल संचालन किया है। आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मीडिया प्रभाग, युवा प्रभाग की अनेक प्रभागों की क्षेत्रीय संयोजिका हैं और हमारे धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। आप उत्तर प्रदेश के प्रयाग सब जोन की मुख्य संचालिका हैं। आपने अभी अभी जो विश्वव्यापी आयोजन भारत का देखा, महाकुंभ, उसका कुशल संचालन और करोड़ों आत्माओं का कल्याण करके, ज्ञान स्नान करा के ज्ञान सागर परमात्मा से उनका मिलन कराया है। आपको अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप ज्ञान सागर की वो सर्वोत्तम ज्ञान गंगा हैं, जिनके शब्दों से होता उजियारा है, जिनके शब्दों से होता उजियारा है, विचारों से मिलता सहारा है। धर्म संस्कृति योग की आप साधिका हैं, धर्म संस्कृति योग की आप साधिका हैं। मनोरमा दीदी जी, आप इस मंच की अमृत धारा हैं, आप इस मंच की अमृत धारा हैं। हम सब आपकी मार्गदर्शना से, अपने कर्तव्य के दायित्व से प्रेरित होकर समाज में एकता अखंडता को स्थापित करेंगे। आदरणीय तपस्वी विदुषी मनस्वी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी, प्रयागराज, इलाहाबाद।
ओम शांति। आ गई बेला विदा की, एहसास नहीं होता। आज ये समापन सत्र आज से दो दिन पहले शुभारंभ हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। हमारा ये संत समाज, हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय इस समाज के रहनुमा, जिन्होंने एकत्र होकर के आज अपनी वाणी से जो अमृत यहां लुटाया है, उसकी बहुत गरिमा है। मैंने आज कलम कागज उठाया और हर संत के उद्गार जो निकले हैं, उन्हें संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि आज का जो विषय है उसमें एक शब्द जिन्होंने डाल दिया है, हमारा योगदान। और हमने देखा कि हमारे बीच उद्भट विद्वान स्वामी राघवानंद जी, स्वामी कर्पात्री जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, हमारे बीच आचार्य महामंडलेश्वर कौशल किशोर जी, हमारे बीच हांसी से आए हुए और वृंदावन से पधारे हुए, माना सबने अपने अपने रस में हमें डुबोया और ज्ञान की रश्मियां यहां बिखेरी। अपने संस्कृत से संपन्न उद्बोधन, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, अब मैं आपको बड़ी सरलता के साथ ले चल रही हूं, ऐसी जगह जहां की समाज को वाकई दिशा देनी है तो पहली चीज है कि हम अपदीपो भव, जो कि आपने सबके मुखारविंद से सुना है कि हम अपने दीपक स्वयं बने और जब हम जागेंगे तो ये संसार निश्चित है जागेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, दाता बने। आपको परमात्मा ने देवत्व दिया है, जो संत समाज बैठा है ये अहिर्निश देता रहता है, कभी आशीर्वाद देता है, कभी शुभकामनाएं देता है, कभी संस्कृत का ज्ञान देता है, कभी वेदों की बात कहता है। तो देवता बने, और देवता वही बन सकता है जो लेने की आकांक्षा न रखे। यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये बात सिखाई जाती है कि अगर किसी बात को, अभी हमारे संतों ने जो बात सुनाई वो ईर्ष्या और उसकी द्वेष वाली, तो उसी में कई बार हम कुंठित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगला झुके, अगला माफी मांगे, अगला कुछ तो करे तो हम भी आकर करें। हमारे यहाँ स्वामी प्रपन्नाचार्य जी प्रयागराज में एक बार सुना रहे थे कि एक कथा में बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था, तो जो सेठ जी आयोजक थे उन्होंने कहा महाराज जी कल नहीं आऊंगा। तो बोला अरे क्यों, कल क्यों नहीं आएंगे? और बहुत भावना के साथ सुनते थे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते थे सुनते सुनते श्री राम कथा को, क्यों नहीं आएंगे? बोला हमारा मुकदमा चल रहा है, कल तारीख है। किससे चल रहा है? बोले बड़े भैया से। बोला कमाल हो गया, लक्ष्मण की तरह यहां बैठ करके इतने भाव से भर के कथा सुनते हैं आप, क्या मुकदमा चला रहे हैं? फिर बिठा के उन्हें समझाया। तो अगर हम लेने की, मतलब कुछ तो करें, मैं केवल इसलिए लड़ रहा हूं, कहीं तो झुकें। और ये हमारी जिंदगी में आए दिन होता है, बात बड़ी नहीं होती लेकिन अहम, मगरूरियत, अहमन्यता, अनेक नामों से जिसे हम जानते हैं, ये बड़ा होता है। और ये हमें ताउम्र लड़ाता है, ताउम्र लड़ाता है। बहुत कुछ बाल सफेद हो जाते हैं काले से, मगर कचहरी दौड़ते रहते हैं। कहते हैं यहाँ एक जस्टिस लोढ़ा जी आए थे तो कहा करते थे, अरे आज के युग में अगर न्याय चाहिए तो सोने के हाथ और लोहे के पैर चाहिए। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग लड़ते रहते हैं। अरे छोटा सा मैं अगर इसे हम धो सकें। अभी कर्पात्री जी ने बहुत कुछ कहा। तो ये जो चीजें हैं इन्हें अगर हम अपने जीवन से हटा दें, लेवता न बने। अरे वो झुकेगा तब हम झुकेंगे, तो ले लिया ना झुकने का सुख। लेवता क्यों बनना है? देवता बनो। अरे तुम ही आगे बढ़ के क्षमा कर दो, तुम ही दो कदम आगे बढ़ जाओ। और यही कारण है कि कई बार ऐसा लगता है सुनते नहीं है, सुनते नहीं ये दिल की कोई दास्तान क्यों, फूलों के जिस्म वालों के पत्थर से कान क्यों। कई बार ऐसा लगता है कि ये बात समाज में सीरियलों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि हमारे ये रहनुमा जगाते नहीं, हमारे ये रहनुमा अनेक मंचों से अनेकों बार उद्घोष करते हैं, हा? लेकिन हम नहीं जगते। तो जगना हमें पड़ेगा, और हमें जगने के लिए केवल एक भाव रखें, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। ये ना सोचें कि अरे ये बड़े जगेंगे तो दुनिया जगेगी, ये ना सोचें कि ये नीचे वाले सुधरेंगे तो ऊपर वाले सुधरेंगे। Why not myself? ये जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई तो विश्व को बेहतर बनाने के लिए, और ये लक्ष्य रखा गया कि कभी उंगलियां उधर मत उठाना, वो सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे। अरे हम सुधरेंगे, हम जहां खड़े हैं अगर हमारी दिशा और दशा बदल जाए तो ये समाज कल बदल जाएगा। और हमें इस समाज को परिवर्तन करने के लिए एक बात याद रखनी है, कभी निराशा मन में नहीं लानी। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी, समय बहुत हो चुका है। हमारे संतों ने बहुत कुछ कहा है, हृदय एकदम भरा हुआ है भावों से, जो आज हमें मिला है वो शायद शायद अभी तक कुछ ही संतों से मिला है। और हमारे ये भाई, हमारे ये संत समाज के पुरोधा जब समाज में खड़े होकर उद्घोष करेंगे तो निश्चित है कि हम समाज में कुछ परिवर्तन की दिशा और दशा को कायम कर सकेंगे। ओम शांति।
आदरणीय दीदी ने बहुत ही सुंदर शब्दों से हम सबको नवाजा। ऐसा लग रहा था शब्द जिनके पास पहुंचकर सरस हो जाते हैं। दीदी के वक्तव्य से, उद्बोधन से, प्रेरणाओं से ऐसा फील हो रहा था शब्द जिनके पास पहुंचकर सरस हो जाते हैं, विचार जिनसे स्पर्श पाकर उज्जवल हो जाते हैं। मनोरमा दीदी आप ऐसी लेखिका हैं, मनोरमा दीदी आप ऐसी लेखिका हैं जो ज्ञान योग और साहित्य सेवा चारों का अद्भुत संगम है, चारों का अद्भुत संगम है। आदरणीय दीदी ने हमारे देवत्व को परमात्मा से जोड़कर समाज की शांति एकता का एक मार्गदर्शन, एक मशाल हमारे हाथ में, हमारे संकल्पों में प्रदान किए। हम दीदी इस मशाल को अपने जीवन में जोड़कर और समाज के प्रत्येक मानव मात्र के मन में शांति का, एकता का, भाईचारे का, देश की अखंडता एक का हम अवश्य चिराग जलाएंगे और हम आध्यात्म की मशाल से स्वयं को प्रकाशित कर सारे भारत के जनमन को प्रकाशित करेंगे, ताकि हमारा भारत शीघ्र ही जगत गुरु बनकर विश्व को रोशन कर सके। अभी मैं कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आती हूँ और वो अंतिम पायदान है जो हमारे संत वृंद की धड़कन है और लक्ष्य है, नर तू ऐसी करनी कर श्री नारायण बन जाए, नारी तू ऐसी करनी कर श्री लक्ष्मी पद को पाए। वो है हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार नारायण भाई, जो हमारे धार्मिक प्रभाग को दिन और रात एक एक इकाई से जोड़कर इस सुंदर समागम में परिवर्तित करते हैं, जो धार्मिक प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक हैं इंदौर मध्य प्रदेश के। उनसे मैं आवाहन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इतने सुंदर संत समागम का और इतने पूजनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय, आदरणीय संतों का और सभा का आभार प्रदर्शन करें। भ्राता नारायण जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर को चरितार्थ करने वाले, इस ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हुए महामंडलेश्वर आचार्य संत महात्माएं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय, अपना तन, अपना समय, अपना शक्ति विश्व कल्याण के कार्य में अपना योगदान दिया है, ये चार दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में आप सभी ने अपना योगदान दिया है और अपना समय इस विश्व को प्रकाशित करने के लिए, इस विश्व में अंधकार को समाप्त कर ज्ञान की ओर ले जाने में आप एक माइलस्टोन साबित होंगे। आप सभी यहाँ पर आए हैं और आप सभी का योगदान करने के लिए आभार इसलिए प्रकट किया जाता है कि योगदान करने वाले का आभा बढ़ती रहे, इसलिए आभार प्रकट किया जाता है। आभार के अंदर आभा शब्द छिपा हुआ है। तो आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी ने बहुत अपना समय, श्वास, शक्ति का जो योगदान दिया है विश्व कल्याण में, सबसे पहले हम श्री बाबा की तरफ से, हमारी दादियों की तरफ से, हमारे पूर्वजों की तरफ से, आप सभी का और धार्मिक प्रभाव की तरफ से बहुत दिल से आप सभी का कोटिस कोटिस आभार प्रकट करता हूं। और आज इस आभार कार्यक्रम में स्टेज पर बैठे हुए संत महात्माओं के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी सामने जो बैठे हुए हैं मेहमान, अगर आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम शायद ही सफल हो पाता है। तो श्रेय तो सबसे पहले आपको जाता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी ने सुन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस कार्यक्रम के पीछे जो नींव का पत्थर कहते हैं, इसके पीछे कई भाई बहनों का हाथ है। केवल एक के हाथ से ये पूरा विश्व परिवर्तन का कार्य और ये धार्मिक प्रभाव का कार्य जो आप देख रहे हैं इतना सुचारू रूप से जो चल रहा है, इसके पीछे कई भाई बहनों का योगदान, दिन रात मेहनत, जो इतनी आप महिमा सुन रहे हैं इसके पीछे हमारे कई भाई बहनों का, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले हमारा भोजन डिपार्टमेंट जो दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, दूसरा आवास निवास डिपार्टमेंट, तीसरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, चौथा साउंड डिपार्टमेंट, पांचवा हमारा स्टेज डिपार्टमेंट, छठा हमारा ये ट्रांसपोर्ट, और सातवां हमारा ऑडियो वीडियो, और आठवां हमारा रेलवे जो आपको रिसीव करने वाला, तो ऐसे हमारे लाइव दिखाने वाले सारा कार्यक्रम जो आपका चार दिवसीय चल रहा है ये पूरा लाइव आप यहाँ के द्वारा, यहाँ पीएम टीवी और अवेकनिंग टीवी के द्वारा पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित किया जा रहा है। तो इन सभी का, इनके साथ और भी कई भाई बहन, कई डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग है। तो सभी का धार्मिक प्रभाव की ओर से आभार प्रकट करते हैं, और साथ में ही रामनाथ भाई की तरफ से और आप सभी को हम पुनः धन्यवाद देते हैं कि प्रतिवर्ष ये संत सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया जाता है। तो जिस तरह से आपने अपना सहयोग दिया, ऐसा ही आपका दिल से सहयोग इस विश्व कल्याण में मिलता रहे, इसी आशा और शुभकामनाओं भावनाओं के साथ आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति। आज शाम का 8:30 बजे मैं पहले माफी मांगना चाहता हूं कि कई संत महात्माएं स्टेज पर बैठी हुई समय अभाव की वजह से हम समय नहीं दे पाए, मैं उनसे माफी मांगता हूं। और साथ में ही जो भी संत महात्माएं और आप सभी में से जो भी अपना अनुभव सुनाना चाहें, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 8:30 बजे के अनुभव सत्र में। और कल सवेरे फिर अमृत वेले का कार्यक्रम भी यहीं रहेगा, और कल लास्ट सेशन राजयोग सत्र 4th यहीं पर रहेगा, इसके बाद ही आप जाने का प्रोग्राम बनाएं। और आपको जो अनुभव पत्र दिया गया फाइल में, वो अनुभव पत्र भर करके आप स्टेज पर या रिसेप्शन पर या कॉन्फ्रेंस ऑफिस में छोड़ के जाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नारायण जी, आपने सबकी आभा को बढ़ाया, और आप सबकी आभा से भारत की आभा बढ़ेगी, भारत का अध्यात्म और धर्म और संस्कृति का प्रेम बढ़ेगा, ऐसी आशा विश्वास जगाई। तो मैं भ्राता नारायण जी का मंच और सभा की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अगले वर्ष अवश्य आएं और सबको लेके आएं। अभी परमात्मा पिता का हम सब मिलकर के मंच और सभा धन्यवाद करते हैं 1 मिनट ईश्वरीय याद की स्मृति से।